नमस्कार भारत, तारीख 23 सितंबर दिन बुधवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। भारत और अमेरिका ने संयुक्त बयान में कहा, लश्कर ए तैयबा जैश ए मोहम्मद डी कंपनी अलकायदा और हक्कानी नेटवर्क से है पूरे क्षेत्र को बड़ा खतरा।
थ्रेट पोस्ट बाय अलकायदा, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, डी कंपनी।
राष्ट्रीय जलवायु एक्शन प्लान के तहत आज भारत घोषणा कर सकता है जलवायु परिवर्तन रोकने के अपने लक्ष्य। 9 दिन बाद हिमाचल प्रदेश की सुरंग से जिंदा बच निकलने की कहानी।
थोड़ा कागज कुगज जो गत्ते गुत्ते हमारे को मिलते वो हमने अपने पास रख लिए थे आगे, ताकि हम उसको खा के अपना दिन गुजार सके, अपनी भूख मिटा सके। और वो किया, फिर हमने वही किया, चौथे दिन हमने वो गत्ते कागज वगैरह थोड़े खा लिए।
खबरें और भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, अशोक कुमार से। भारत और अमेरिका ने मुंबई हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ये बात वॉशिंगटन में दोनों देशों की रणनीतिक और वाणिज्यिक साझेदारी बैठक के बाद भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई। दोनों देशों ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, डी कंपनी, अलकायदा और हक्कानी नेटवर्क जैसे गुटों को पूरे क्षेत्र के लिए बड़ा खतरा बताया है। यूरोपीय संघ के गृह मंत्रियों ने उस योजना को मंजूरी दे दी है जिसके तहत हंगरी, ग्रीस और इटली से 120,000 प्रवासियों को अन्य यूरोपीय देशों में जगह दी जानी है। संघ के ज्यादातर देशों ने कोटे आधारित इस व्यवस्था के पक्ष में मतदान किया, लेकिन चेक गणराज्य, हंगरी, रोमानिया और स्लोवाकिया ने इसका विरोध किया। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि वो इस व्यवस्था को लागू नहीं करेंगे, जबकि हंगरी ने कहा कि वो यूरोपीय संघ के इस फैसले से खुश तो नहीं है, लेकिन इसे लागू करेगा। उधर जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने प्रवासी संकट के कारणों को सुलझाने पर बल दिया है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि हमें उन कारणों से निपटना है जिनके चलते लोग अन्य देशों में भाग रहे हैं। अभी तो ऐसा लग रहा है कि प्रवासियों की ये पूरी प्रक्रिया अनसुलझी है, बावजूद इसके मुझे भरोसा है कि हम इसे संभाल सकते हैं और संभालेंगे। ये थे जर्मन चांसलर के शब्द। उधर पहली बार कुछ सीरियाई शरणार्थी ब्रिटेन पहुंचे हैं। ब्रिटेन ने घोषणा की है कि वो अगले 5 साल में अपने यहाँ 20,000 प्रवासियों को जगह देगा। अपने पहले अमरीकी दौरे पर पहुंचे पोप फ्रांसिस का राष्ट्रपति बराक ओबामा ने स्वागत किया है। पोप क्यूबा की यात्रा के बाद अमरीका पहुंचे हैं और अपने 6 दिन के इस दौरे में वो वॉशिंगटन DC, न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया जाएंगे। आज वो व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ओबामा से मिलने वाले हैं। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। अमरीकी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि अलकायदा के एक सदस्य अब्दुल शालाबी को ग्वांतानामो बे की जेल से सऊदी अरब स्थानांतरित कर दिया गया है। शालाबी के बारे में संदेह है कि एक समय वो ओसामा बिन लादेन के अंगरक्षक के तौर पर काम कर चुके हैं। शालाबी 2002 से ग्वांतानामो बे की जेल में कैद थे। बताया जाता है कि वो पिछले 10 साल से भूख हड़ताल पर भी थे। कांग्रेस ने इन अटकलों को खारिज किया है कि पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर से छुट्टी पर चले गए हैं। कांग्रेस ने कल रात स्पष्ट किया कि राहुल गांधी एक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी ऐसे समय में अमेरिका गए हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुरुवार से 6 दिन के अमरीकी दौरे पर होंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर अमरीका पहुंच गए हैं। आज वो सिएटल में विमान निर्माता कंपनी बोइंग की एक फैक्ट्री का दौरा करेंगे। BBC समाचार।
BBC हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। जैसा कि अभी अभी आपने समाचारों में अशोक कुमार से सुना, भारत और अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोगी में तेजी लाने का ऐलान करते हुए लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, डी कंपनी, अलकायदा और हक्कानी नेटवर्क को पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़ा खतरा बताया है। साथ ही दोनों देशों ने पाकिस्तान से मुंबई पर हुए हमले के गुनाहगारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सुनिए वॉशिंगटन से BBC संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय की रिपोर्ट।
वॉशिंगटन में रणनीतिक और वाणिज्य साझेदारी पर 2 दिनों तक चली बैठक के बाद दोनों देशों ने पहली बार आतंकवाद के खिलाफ अलग से एक साझा बयान जारी किया है। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का कहना था कि उन्हें खुशी है कि अमेरिका ने भारत की चिंताओं को समझा है और आतंकवाद के खिलाफ साथ मिलकर कार्रवाई करने का वादा किया है।
वी रीट्रेट द थ्रेट पोस्ड बाय अलकायदा, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, डी कंपनी एंड द हक्कानी नेटवर्क एंड अदर रीजनल ग्रुप्स।
सुषमा स्वराज का कहना था कि इस बात को दोहराया गया है कि लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, डी कंपनी, अलकायदा और हक्कानी नेटवर्क दक्षिण एशिया की शांति के लिए खतरा हैं, और साथ ही पाकिस्तान से मांग की गई है कि वो मुंबई के हमलावरों के खिलाफ कदम उठाए। इस साझा बयान में गुरदासपुर और उधमपुर में पिछले दिनों हुए चरमपंथी हमलों की भी कड़ी निंदा की गई है। दोनों ही देशों ने इस्लामिक स्टेट या दाइश को एक बड़ा खतरा मानते हुए उसे हराने के लिए मिलकर काम करने की भी बात की है। अमरीकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने कहा है कि पिछले 6 सालों में अमरीकी खुफिया तंत्र ने साझेदार देशों, खासतौर से भारत के साथ मिलकर कोशिश की है कि हमलों को अंजाम देने से पहले ही रोका जा सके। उनका कहना था, मुंबई हमलों के बाद इस तरह की कोशिशें बढ़ी हैं और हम जानते हैं कि आसान काम नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि हम इन हमलों को पहले ही रोक सकें। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में शांति के लिए भी दोनों देशों ने सहयोग जारी रखने की बात की है, और काबुल हिंसा फैलाने वाले चरमपंथियों के खिलाफ मजबूती से खड़ा हो सके उसके लिए आने वाले दिनों में उठाए जाने वाले कदमों पर भी बात हुई है। आतंकवाद के अलावा इस बैठक में आपसी व्यापार में 5 गुना बढ़ोतरी करने के लिए किस तरह के कदम उठाए जाएं, उन पर भी खासी बातचीत हुई है। अमरीकी वाणिज्य मंत्री पेनी प्रिजकर का कहना था कि इसी हफ्ते भारत ने अमरीकी कंपनी बोइंग से अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदने का जो समझौता किया है वो दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी भारत को बिजनेस के लिए आसान जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बीबीसी हिंदी के साथ एक खास बातचीत में उन्होंने कहा कि आपसी व्यापार बढ़ाने के लिए उच्च स्तर पर कोशिशें तेज हो रही हैं।
I think that Prime Minister Modi is to be commended for his efforts.
उनका कहना था कि इस दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के प्रयास सराहनीय हैं, लेकिन उन्हें अपने प्रशासन और राज्यों से सहयोग की जरूरत है। दोनों ही देशों ने जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, रक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी खासा बल दिया है। माना जा रहा है कि 2 दिनों की इस बातचीत ने 28 सितंबर को न्यूयॉर्क में राष्ट्रपति ओबामा और प्रधानमंत्री मोदी की होने वाली मुलाकात का एजेंडा तय कर दिया है। विश्लेषकों का कहना है कि ओबामा प्रशासन के रहते रहते शायद ये आखिरी मौका होगा कि दोनों देश आने वाले दिनों में आपसी रिश्तों की दिशा को तय कर सकें। ब्रजेश उपाध्याय, BBC, वॉशिंगटन।
भारत और अमेरिका ने कहा लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, डी कंपनी, अलकायदा और हक्कानी नेटवर्क हैं पूरे क्षेत्र के लिए खतरा। माना जा रहा है कि राष्ट्रीय जलवायु एक्शन प्लान के अंतर्गत भारत आज घोषणा कर सकता है कि वो जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए अपने क्या लक्ष्य निर्धारित करेगा। दुनिया भर के देशों को दिसंबर में पेरिस में अपने लक्ष्यों को पेश करना है। विनीत खरे ने इस पूरे मामले और इस प्रक्रिया को समझने के लिए दिल्ली साइंस फोरम के डॉक्टर रंगनंदन से बात की।
विश्व भर में सब देशों ने मिलकर यह तय किया है कि जलवायु परिवर्तन के वजह से जो तापमान बढ़ा है और बढ़ेगा वो 2 अंक सेल्सियस के नीचे हम रखेंगे। तो जितने देश हैं सबने अपने अपने टारगेट तय करने हैं और पेरिस में दिसंबर में ये टारगेट रखे जाएंगे। पर क्या जितने देश हैं उनके टारगेट को मिला के देखेंगे क्या उतने लेवल तक पहुंचेगा कि 2 अंक सेल्सियस के नीचे रहे, ये अभी भी डाउट है। दूसरा सवाल ये है कि हर देश ने अपना टारगेट तय करना है, तो भारत ने भी एक टारगेट तय करना है और वो विश्व के सामने रखना है। तो ये क्या टारगेट होगा, इसकी अहमियत ये है कि जब ये सवाल पहले उठा था 20-21 साल पहले, तब ये माना जाता था कि विकासशील देशों को कोई टारगेट लेने की ज़रूरत नहीं है, केवल विकसित देशों को लेने की ज़रूरत है। अब 2015 में ये तय है कि अगर बड़े विकासशील देश चीन, भारत, ब्राज़ील, इन देशों ने अगर कोई टारगेट नहीं रखा उत्सर्जन को कम करने के लिए, तो ये लक्ष्य जो है ये पूरा नहीं हो सकता।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उम्मीद की जा रही है बुधवार को कि इस पर कोई फैसला ले सकते हैं और इस पर ज्यादा डिटेल्स सामने आ सकती हैं। भारत क्या कदम उठा सकता है?
मुझे लगता है कि भारत ने अभी तक ऑलरेडी पिछले जो विश्व भर के समिट्स मीटिंग्स हुई हैं वहाँ पे हमने एक लक्ष्य रखा है कि हम 2025 तक हमारे भारत के एमिशंस इंटेंसिटी यानी कि कितनी उत्सर्जन करते हैं इन रिलेशन टू हमारी GDP या आर्थिक वृद्धि कितनी है, उसका एक रेशियो जो निकलता है वो हम तकरीबन 25% कम करेंगे अगले 10 साल में। मुझे लगता है कि अब क्योंकि हमने टारगेट रखना है 2030 तक, तो मुझे लगता है कि ये 25% से लेके 40-50% तक बढ़ सकता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत ऐसा लक्ष्य सामने रखेगा। भारत को मुझे लगता है ये करना चाहिए कि हम विकसित देशों पे दबाव डालें कि जो उन्होंने लक्ष्य अनाउंस किए हैं उसको और दृढ़ता से रखें। खास करके अमेरिका ने बहुत कमज़ोर लक्ष्य रखे हैं। ये जो लक्ष्य रखने हैं हर देश, उसको कहते हैं इंटेंडेड नेशनली डिटर्मिंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, यानी ये देश पूरा मिल के तय करें। अभी तक अनफॉर्चुनेटली ये केवल एक सरकारी लक्ष्य है। मुझे लगता है कि सरकार के साथ उद्योग, आम जनता, हम सबको मिल के इस लक्ष्य को तय करना है, क्योंकि ये केवल सरकार नहीं कर पाएगी। अगर हमने प्रदूषण को कम करना है, इसमें हमें बिजली से पैदा होने वाले जो कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन्स हैं उनको कम करना चाहिए, गाड़ियों से जो निकल रही है उनको कम करना चाहिए, पर ये दोनों चीज़ें तब तक नहीं हो पाएंगी जो हम विश्व भर में कह रहे हैं कि अगर अमेरिका, यूरोप अपने एमिशन्स को कम करे तभी भारत और चीन अपने थोड़े एमिशन्स को अगर बढ़ा सकते हैं तो दोनों मिलके एक लेवल पे आए।
तो भारत आज बता सकता है कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए उसके लक्ष्य क्या हैं। ये थे दिल्ली साइंस फोरम के डॉक्टर रघुनंदन। राजस्थान विधानसभा ने कल राजस्थान विशेष पिछड़ा वर्ग विधेयक 2015 को पारित कर दिया। इस विधेयक के तहत अनारक्षित वर्ग के आर्थिक पिछड़ों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 14% आरक्षण मिलेगा। इस तरह अब राजस्थान में 68% आरक्षण हो गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% की सीमा से ज्यादा है। इसके भविष्य को लेकर कई सवाल हैं, क्योंकि ऐसा करने से राज्य में आरक्षण कानूनी सीमा का उल्लंघन हो सकता है। जयपुर से आभा शर्मा की रिपोर्ट।
इस साल मई में हुए आंदोलन के बाद गुर्जर समुदाय को किए गए आरक्षण के वादे के तहत राजस्थान सरकार ने मंगलवार को 2 विधेयक पारित किए। इनसे गुर्जर सहित बंजारा, गाड़िया, लोहार जैसी विशेष पिछड़ा वर्ग जातियों को अलग से 5% और अनारक्षित वर्ग के आर्थिक पिछड़ों को 14% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस बार सरकार ने इन विधेयकों को संविधान की नवी अनुसूची में शामिल करवाने का प्रयास करने की भी बात कही है, पर यदि ऐसा नहीं हुआ तो यह एक बड़ा सवाल है। और इस बारे में राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस पानाचंद जैन से बात की।
90% यही चांसेस है कि नहीं मिलेगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बहुत टाइम लगेगा। अभी तो पार्लियामेंट में अच्छे अच्छे कानूनी बन रहे हैं, कहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा इसका।
अच्छा, तो ये एक तरह से अभी थोड़ा झुंझुना देने का काम है।
तो केवल मात्र जो है जस्ट टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ दिस कम्युनिटी पर्सन।
राजस्थान में वर्तमान में अन्य पिछड़ा वर्ग को 21%, अनुसूचित वर्ग को 16 और जनजाति वर्ग को 12% आरक्षण प्राप्त है। हालिया 14% और 5% को मिलाकर राज्य में आरक्षण का कोटा 68% पर पहुंच जाता है। राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष राजा राम मील कहते हैं, सरकार गुर्जरों को आरक्षण देना चाह रही है, पर उन 75 जातियों का क्या जो अन्य पिछड़े वर्ग में उनसे भी बहुत कमजोर हैं, जाट भी। उधर सर्व ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष सुरेश मिश्रा को लगता है कि सरकार ने फिर से इस बार मीठी गोली देने की कोशिश की है।
ये जो पुराना प्रस्ताव था, शशिकांत शर्मा जी की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था, जबकि कोर्ट ने पिछली बार कहा था 2010 में कि आयोग की रिपोर्ट दोबारा बनाई जाए, गुजरों के लिए भी और जनजातियों के लिए भी। ना तो दोबारा रिपोर्ट बनाई, उसी रिपोर्ट पर आधार बना के उन्होंने कर दिया। तो ये मामला निश्चित रूप से कोर्ट में जाएगा और लिटिगेशन में अटक जाएगा।
इन विधेयकों से आरक्षण की मांग कर रही जातियों को लाभ मिलेगा या नहीं, यह तो समय बताएगा, पर फिलहाल संविधान की नवी सूची में शामिल करने के प्रस्ताव से राजस्थान सरकार ने गेंद केंद्र के पाले में खिसका दी है। जयपुर से आभा शर्मा।
रुख उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बिहार की राजधानी पटना में कहा कि बिहार में अगली सरकार तीसरे मोर्चे की बनेगी। राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस के महागठबंधन से निकलने के बाद समाजवादी पार्टी तीसरे मोर्चे के तहत चुनाव लड़ रही है। इस मोर्चे में समाजवादी पार्टी, एनसीपी, जन अधिकार मोर्चा, समरस समाज पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी और समाजवादी जनता दल शामिल हैं। पटना से नीरज सहाय की रिपोर्ट।
एनडीए और महागठबंधन के बीच तीसरी ताकत बनने को बेताब समाजवादी पार्टी समेत पांच दलों के सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन से बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने को दस्तक दे दी गई। सम्मेलन में सभी दलों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे और एनसीपी के तारिक अनवर की अध्यक्षता में चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया गया। सम्मेलन के मुख्य आकर्षण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश गठबंधन के दोनों नेताओं लालू प्रसाद और सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ खुलकर बयान देने से बचते रहे।
सुना है डीएनए की भी बात हो गई थी एक बार, कोई डीएनए नहीं जानता डीएनए क्या होता है। डीएनए ऐसा फेमस हो गया कि लोग भी कहो डीएनए पे चर्चा करने लगे। ये तो आप लोग जानते हो, कभी कभी क्रिमिनलों से पूछा जाता है कि इनका डीएनए टेस्ट करवा लो। बायोलॉजी के भी शब्द आ गए इसमें, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होगा, पता नहीं कहां की बात कहां जुड़ गई।
जबकि एनडीए पर भी उनका हमला सतही ही था। उन्होंने इशारों इशारों में भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन के नारे पर चुटकी ली, साथ ही उन्होंने यूपी के विकास मॉडल की भी चर्चा की।
सुना है बिहार को 1,25,00,000 का पैकेज मिला है, और ये पैकेज कैसे काम काज करेगा, कैसे जनता में खुशहाली लाएगा। मैं तो उत्तर प्रदेश से आया हूँ, मुझे नहीं पता, मैं मुख्यमंत्री वहाँ पर, और बिहार में पता नहीं आया है पैसा पिछले 1.5 साल में कितना आया है, बिहार के लोग जानते होंगे। बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए गए, मैंने सुना कि बहुत बड़े सपने दिखाए गए, और ऐसे सपने, ऐसे अच्छे दिनों के सपने जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि जमाना बदला है, मार्केटिंग और ब्रांडिंग का जमाना है। कोई कंपनी तय कर देती है कि अच्छे दिन ऐसे आ सकते हैं, तो तय कर लिया उन्होंने कि अच्छे दिन ऐसे आएंगे। वो उस पार्टी का नारा नहीं था, वो ब्रांडिंग और मार्केटिंग वाली कंपनी का नारा था। वो कंपनी उनको लड़ा रही थी चुनाव, उस कंपनी से हिसाब किताब बदल गया, वो कंपनी दूसरों को चुनाव लड़ा रही।
सम्मेलन में तीसरे मोर्चे के घटक दलों के मुख्य नेताओं में जन अधिकार मोर्चा के पप्पू यादव, समरस समाज पार्टी के नागमणि, समाजवादी जनता दल के देवेंद्र प्रसाद यादव और नेशनल पीपुल्स पार्टी के संजय वर्मा उपस्थित रहे, और इन्होंने अपने अपने विचार भी रखे। हालांकि वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश कुमार तीसरे मोर्चे को महागठबंधन को नुकसान और एनडीए को फायदा पहुंचाने वाला बताते हैं।
तीसरे मोर्चे के बिहार विधानसभा चुनाव में उतरने से सबसे बड़ा ये एक परिवर्तन दिख रहा है कि वो उनके बेस वोट, उनके जो आधार वोट हैं, वो जदयू और राजद के आधार वोट पर ही चोट करना होगा। जैसे समाजवादी पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, जन अधिकार पार्टी जिसके अध्यक्ष पप्पू यादव हैं, उन लोगों ने फोकस किया है कि वो अधिक से अधिक यादव और मुस्लिम उम्मीदवार को ही चुनाव मैदान में उतारेंगे। महागठबंधन का भी आधार वोट वही है, यादव और मुस्लिम को फोकस करेंगे, तो इससे नुकसान जो एक हो, जो भी नुकसान हो सकता है, तो वो महागठबंधन को ही नुकसान पहुँचेगा, और इसका सीधा लाभ कहीं ना कहीं से एनडीए को मिलेगा।
सम्मेलन में लोगों की उपस्थिति तो अच्छी रही, लेकिन यह भीड़ वोट में तब्दील होगी या फिर महज वोट कटवा साबित होगी, यह आने वाला समय ही बताएगा। नीरज सहाय, बीबीसी पटना।
तो बिहार में तीसरे मोर्चे ने ठोकी ताल, और अब कार्यक्रम में वक्त है अखबार के पन्ने पलटने का। अखबारों की सुर्खियां जुटाकर अशोक कुमार बैठे हुए हैं।
जी मोहनलाल जी, आज के सभी अखबारों में बड़ी खबर है सोशल मीडिया से जुड़ा वो प्रस्ताव जिसे सरकार ने वापस ले लिया है। प्रस्ताव ये था कि इंटरनेट कंपनियां व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और ईमेल सहित सभी मैसेजेस को 90 दिन तक सुरक्षित रखें, लेकिन इसका तीखा विरोध होने पर सरकार ने कदम पीछे खींच लिए हैं।
यानी कि अब 90 दिन के भीतर आप डिलीट कर सकते हैं।
जी, नई दुनिया ने इस पर लिखा है कि व्हाट्सएप पर अब नहीं होगा सरकार का पहरा, तो दैनिक जागरण की सुर्खी है मैसेज पर मर्जी आपकी। वहीं नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है पहरे की पॉलिसी फौरन डिलीट। अमर उजाला में भी एक बड़ी सी हेडलाइन के साथ खबर लगी है, नेपाल का संविधान भारत को मंजूर नहीं, भारतीय राजदूत के जरिए काठमांडू को भेजा जाएगा सख्त संदेश। जनसत्ता ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी और सुर्खी लगाई है नेपाल में संविधान में 7 संशोधन करने चाहिए, ये भारत का रुख है। वहीं जनसत्ता की खबर है सोमनाथ भारती पर गिरफ्तारी की तलवार, सोमनाथ भारती यानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्व कानून मंत्री, भारती की पत्नी ने उन पर उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया और अदालत में अग्रिम जमानत की उन्होंने जो अर्जी दी थी उसे खारिज कर दिया गया है। दैनिक जागरण की इस पर सुर्खी है, भारती की गिरफ्तारी तय तो नवभारत टाइम्स हेडलाइन देता है, पुलिस पीछे, भारती जाएंगे सुप्रीम कोर्ट।
ये बताइए अशोक जी, ये जो कल गुड़गांव में फ्री कार डे था, इस पे कुछ है?
हाँ, अमर उजाला ने अपने पहले पन्ने पर सबसे ऊपर यही खबर लगाई है, लिखता है कार फ्री डे पर गुड़गांव ने दिखाई जाम से मुक्ति की राह। दरअसल दिल्ली से सटे गुड़गांव के कुछ इलाकों में कल सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक कारें नहीं चली और इस दौरान साइकिल से अपने दफ्तर जाते हुए शहर के पुलिस कमिश्नर की तस्वीर आप देख रहे हैं अखबार पर, पूरे अमले के साथ साइकिल पर सवार हैं। इसी से जुड़ी खबर दैनिक जागरण की, जिसके मुताबिक दिल्ली सरकार केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में 5 व्यस्त सड़कों को महीने में कम से कम एक दिन कार मुक्त बनाने का फैसला किया है।
क्या बात है, अगर ऐसा हो जाए तो आधी समस्याओं का समाधान हो जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया अशोक। सोचिए कि कैसा लगता होगा कि अगर आप किसी ऐसी जगह पर फंस जाएं जहां से निकलने का रास्ता ना हो, तब खुद को जिंदा रखने के लिए इंसान क्या क्या कर सकता है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 9 दिनों से एक निर्माणाधीन सुरंग में फंसे 2 मजदूर सतीश तोमर और मणिराम को सुरक्षित निकाल लिया गया। ये मजदूर किरतपुर मनाली रोड पर पहाड़ काटकर बनाई जा रही एक सुरंग का हिस्सा गिर जाने से बीते शनिवार से फंसे हुए थे। विनीत खरे ने सतीश तोमर से बात की।
भगवान जो करता था ठीक होता है, बट जैसे हम साइड पे गए हैं 8:15 बजे हम अंदर जा रहे थे, फॉरमैन जी ने मेरे को बोला कि मशीन की सफाई कर दो, तो जैसे हम अंदर भी जा रहे थे मैं सामान ले गया, आगे सामान रखने गया फेस में, एक बंदा मेरे साथ और था, तो उन्होंने मेरे को बोला कि क्या करना है क्या काम है, मैंने बोला मेरा मशीन सफाई करो, मैं सामान रख के आया, सामान रख में आगे गया फेस में जो प्रोफाइल बनी थी आगे रनिंग काम के लिए उसको देख रहा था, उतने में पीछे से आवाजें भागो भागो, और शायद वहाँ पे जो और साथी था उसको आवाजें मार रहे थे, तो हम पीछे भागे, तो जैसे हम पीछे आए सर तो हम सोच रहे थे शायद हम तब तक निकल जाए, बट सर हम नहीं निकल पाए, आधे रास्ते में ही आए उतने में ऊपर से गिर गया था।
कैसे गुजारे वो 9 दिन और कितना मुश्किल कितना डरावना?
जब मौत सामने है तो डर तो रहता है, बट फिर ये कि हमने हौसला रखा है और हौसले को भगवान ने भी देखा कि नहीं ये हिम्मत हारने वाले नहीं है, भगवान ने हमारी हौसले को देख हमारे एक नई जिंदगी दे दी।
आप और मणिराम आपस में बात करते थे, क्या बातें करते थे?
भगवान के बारे में बोला, भगवान के वहाँ पे कुछ हमने कीर्तन भजन भी फिर कर दिए, भगवान की मनोकामना भी मांगते रहे एक दूसरे के कि हे भगवान हमारे को अगर आप जीवित बाहर निकालते हैं तो गांव के जो हमारे मंदिर है उनको हमने बोला फिर इसको मैं अपने यहाँ लाऊंगा और मैं इनके यहाँ भी जाऊंगा, कहने का मतलब ये एक दूसरे की हमने हिम्मत नहीं टूटने दी। देखो तो स्टार्टिंग में 1.5-2 दिन तक हमने सोचा कि कुछ कर ही रहे होंगे, बट कुछ मशीन की आवाज कुछ सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए हमने सोचा कि शायद मुश्किल है, उन्होंने सोचा है कि ये खत्म हो गए हैं, इसलिए और हमने मन में एक बात ठान ली थी कि चलो हमने हौसला रखना है, थोड़ा कभी 10-15 दिन बाद हो महीने बाद हो करेंगे इसको साफ करेंगे और हमारे को आगे से निकालेंगे। चार दिन तक कुछ नहीं खाया, चौथे दिन खाया, 3 दिन तक हमने कुछ नहीं खाया सर, जो ऊपर से डालते थे वो तो पांचवें दिन डाला, बट हमने 3 दिन तक कुछ नहीं खाया, चौथे दिन फिर हमने वहाँ पे जो अपना पहले ही बंदोबस्त रख रखा था थोड़ा कागज कुगज जो गत्ते गुत्ते हमारे को मिलते वो हमने अपने पास रख लिए थे आगे ताकि हम उसको खा के अपना दिन गुजार सके, अपनी भूख मिटा सके, और वो किया फिर हमने वही किया, चौथे दिन हमने वो गत्ते कागज वगैरह थोड़े खा लिए और पांचवें दिन तो फिर ऊपर से वो आ गया था, हॉल हो गया था जिससे हमें खाना वगैरह ड्राई फ्रूट वगैरह।
जिस जगह पर आप लोग फंसे हुए थे वो हमें जगह बताइए कि मतलब कैसी जगह थी, कितनी स्पेस कितनी थी?
ऐसा शांत माहौल बहुत कम मिलता है और कि अब वो जान तो खतरे में है, बस इस शांत माहौल में हम क्यों ना भगवान को याद करें, तो हम अधिकतर टाइम भगवान का नाम लेते थे और कम समय हम सोते थे।
तो सो पाते थे वहाँ पर, मतलब जगह थी इतनी कि लेट जाएं या फिर थोड़ा पांव फैला लें, कुछ इस तरह की जगह होती थी?
पहले तो सर नीचे जमीन पे सोते थे जहाँ थोड़ा हल्का हाइट का रास्ता बना हुआ था, बट कुछ एक दो दिन बाद पानी भर गया तो वहाँ से हमने फिर वहाँ अंदर एक मशीन फंसी है उनकी, तो हम बाद में फिर मशीन के ऊपर चढ़ गए और वहीं अपना सब कुछ खाने पीने का रहने का हवा हुआ।
फिर जब आप बाहर निकले होंगे तो आपके परिवार के लोग होंगे, सबसे पहली चीज क्या की आपने?
मैं बाहर निकला, लोगों ने मेरे को गले लगाने लगे तो मैंने लोगों को बोला कि रुक जाओ, पहले मेरे को धरती माँ को नमस्कार करने दो, उनके चरण स्पर्श करने दो जिन्होंने मेरे को अभी तक जिंदा रखा, सही सलामत बाहर निकला, तो मैंने धरती माँ को पहले नमस्कार किया।
ये थे 9 दिन बाद सुरंग से निकले सतीश तोमर, जिनसे बात कर रहे थे विनीत खरे। और अब कार्यक्रम में उन खबरों की चर्चा करेंगे जिन पर रहेगी आज हमारी नजर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयरलैंड और अमेरिका के दौरे पर रवाना हो गए हैं। अमरीकी दौरे में मोदी सिलिकॉन वैली का भी दौरा करेंगे। बिहार में विधानसभा चुनावों के पहले चरण के लिए आज नामांकन करने का आखिरी दिन है। इस चरण में 12 अक्टूबर को 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चेन्नई सुपर किंग्स की याचिका पर आज मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आईपीएल की इस फ्रेंचाइजी को लोढ़ा समिति ने फिक्सिंग और सट्टेबाजी का दोषी पाया और उसे आईपीएल से 2 साल के लिए निलंबित कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में पोप फ्रांसिस आज व्हाइट हाउस में अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिलेंगे और रूस के दौरे पर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान आज मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं।
तो ये थी वो खबरें जिन पर रहेगी आज हमारी नजर और अब कार्यक्रम में बात करेंगे खेल समाचारों की।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। भारत और दक्षिण एशिया के सबसे बड़े एटीपी वर्ल्ड टूर टेनिस टूर्नामेंट में से एक चेन्नई ओपन का आयोजन अगले साल 4 से 10 जनवरी तक चेन्नई में होगा। इस टूर्नामेंट में 2 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता स्विट्जरलैंड के स्टेन वावरिंका भी अपना खिताब बचाने के लिए कोर्ट पर उतरेंगे। वैसे उनके पास खिताबी हैट्रिक बनाने का अवसर भी होगा। वावरिंका ने इस साल फाइनल में स्लोवेनिया के अल्जाज बेदेने को 6-3, 6-4 से और पिछले साल फ्रांस के एडवर्ड रोजर वेसेलिन को 7-5, 6-2 से हराया था। वैसे वावरिंका साल 2011 में भी चेन्नई ओपन अपने नाम कर चुके हैं। सोमदेव देव वर्मन इकलौते भारतीय खिलाड़ी हैं जो एकल वर्ग में साल 2009 में फाइनल में पहुंचे, लेकिन उन्हें क्रोएशिया के मारिन चिलिस से 6-4, 7-6 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं पिछले दिनों डेविस कप विश्व ग्रुप प्लेऑफ मुकाबले में भारत भले ही चेक गणराज्य से 3-1 से हारा, लेकिन इसके बावजूद उसे डेविस कप ग्रुप 1 एशिया ओशियाना क्षेत्र में शीर्ष वरीयता दी गई है। अगले साल के ड्रॉ का ऐलान सेंटियागो में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ की वार्षिक बैठक समाप्त होने के बाद किया जाएगा। इस क्षेत्र में भारत के बाद उज्बेकिस्तान को दूसरी वरीयता दी गई है। दोनों देशों को पहले दौर में बाई मिलेगी, जिसका आयोजन अगले साल मार्च में होगा। भारत और उज्बेकिस्तान के अलावा चीन, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान को भी एशिया ओशियाना ग्रुप ए में जगह मिली है। उधर भारतीय क्रिकेट टीम का अभ्यास शिविर बेंगलोर में शुरू हो गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगी, जो भारत में 2020 एक दिवसीय और टेस्ट सीरीज खेलेगी। वहीं पाकिस्तानी टीम जिम्बाब्वे का दौरा करेगी, जहां वो 2 2020 और 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगी। जिम्बाब्वे दौरे को लेकर पाकिस्तान के ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी कहते हैं,
मैं तो कभी भी किसी भी टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता, स्पेशली 2020 फॉर्मेट में जाएं, एक दफा हाथ से गेल निकल जाए तो फिर वापस आना बड़ा मुश्किल होता है। जिम्बाब्वे नो डाउट अच्छा खेल रही है, उन्हीं के ग्राउंड में, उन्हीं की कंडीशन में हो रही है मैच। इससे पहले भी लास्ट जब हमने होम सीरीज खेली थी यहाँ पे, उसमें भी कोई इतने इजिली हम नहीं जीते थे।
उधर हॉकी इंडिया और हॉकी न्यूजीलैंड ने आपस में 6 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने का फैसला किया है। इस टेस्ट सीरीज को खेलने के लिए भारतीय हॉकी टीम न्यूजीलैंड का दौरा करेगी। दोनों देशों के बीच पहला मैच ऑकलैंड में 2 अक्टूबर को और छठा और आखिरी मैच क्राइस्टचर्च में 11 अक्टूबर को खेला जाएगा।
खेल समाचार सुना रहे थे आदेश गुप्त और इससे पहले की कार्यक्रम में हम आपसे विदा ले, एक बार मुख्य समाचार फिर से सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। भारत और अमेरिका ने मुंबई हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। यूरोपीय संघ के गृह मंत्रियों ने उस योजना को मंजूरी दे दी है जिसके तहत हंगरी, ग्रीस और इटली से 1,20,000 प्रवासियों को अन्य यूरोपीय देशों में जगह दी जानी है, लेकिन चेक गणराज्य, हंगरी, रोमानिया और स्लोवाकिया ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। कांग्रेस ने इन अटकलों को खारिज किया है कि पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर से छुट्टी पर चले गए हैं। कांग्रेस ने मंगलवार रात स्पष्ट किया कि राहुल गांधी एक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका गए हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर अमेरिका पहुंचे हैं, जहां आज वो सिएटल शहर में विमान निर्माता कंपनी बोइंग की एक फैक्ट्री का दौरा करेंगे। अमरीकी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि अलकायदा के एक सदस्य अब्दुल शालाबी को ग्वांतानामो बे की जेल से सऊदी अरब स्थानांतरित कर दिया गया है। शालाबी के बारे में संदेह है कि एक समय वो ओसामा बिन लादेन के अंग रक्षक के तौर पर काम कर चुके हैं। बीबीसी समाचार।
इसके साथ ही नमस्कार भारत यानी कि बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा का ये अंक यहीं संपन्न होता है। आज स्टूडियो संभाल रहे थे देवाशीष। 1 घंटे बाद यानी कि भारतीय समय के मुताबिक 8 बजे आपसे हम फिर मुखातिब होने वाले हैं। तब तक मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।